निकल जाओ यहां से। माहिरा एक पल के लिए संभल नहीं पाई, उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही थी। अभी इसी वक्त सादिया की आंखें गुस्से से भरी थी। पहले ही रेहान की वजह से उसका मूड खराब था, फिर उसने रेहाना बेगम और फरीद खान की बातें सुन ली थीं, और जो थोड़ी बहुत हिम्मत बची थी उसे माहिरा ने पूरी तरह खत्म कर दिया था। माहिरा ने खुद को संभालते हुए हाथ छुड़ाया, मगर इस बार उसकी मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई थी। सादिया दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए खड़ी थी, सीधी, मजबूत और गुस्से से भरी। समझ नहीं आता क्या, या दोबारा कहूं? कमरे का माहौल भारी हो गया। उसने पलटकर सादिया को देखा, उसकी आंखों में जलन साफ थी। अगर तुम अपने डैड की प्रॉपर्टी की वारिस ना होती, उसने धीमे मगर कड़े लहजे में कहा, तो दुनिया की कोई ताकत मुझे इस कमरे से इन और तुम्हें आउट करने से नहीं रोक सकती थी। कमरे में जैसे ठंडक जम गई। माहिरा को रेहान शुरू से पसंद था, और ये बात उसके हर लफ्ज में झलक रही थी। सादिया ने उसे बिना पलक झपकाए देखा, फिर धीरे से बोली, जानती हो इस कमरे में कौन है? एक सेकंड का ठहराओ, मैं और तुम नहीं। माहिरा के चेहरे की मुस्कान हल्की सी खिसक गई। सादिया आगे बोली, और रही बात प्रॉपर्टी की, तो वो सिर्फ मेरे पास नहीं थी, फैजान के पास भी थी। उसकी आवाज और गहरी हो गई, मगर तुमने उसे इस घर से निकलवा दिया। ये सीधा इल्जाम था। माहिरा का चेहरा सख्त हो गया। ना मैंने उसे जाने को कहा, और ना ही मुझे पैसों में कोई इंटरेस्ट है, उसने तेजी से जवाब दिया। वो खुद गया, क्योंकि उसे बोलने की तमीज नहीं थी। ताया अब्बू और डैड के सामने जुबान चलाता था, इसीलिए उसे जाना पड़ा। सादिया हल्का सा हंसी, मगर वो हंसी तन से भरी थी। तुमने जानबूझकर किया, उसने सीधा कहा, क्योंकि तुम फैजान के साथ रहना ही नहीं चाहती थी, इसीलिए उसे निकलवा दिया। माहिरा की आंखों में गुस्सा चमक उठा। वो एक कदम आगे बढ़ी और सादिया के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। उसने धीमे मगर खतरनाक लहजे में कहा, फिर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। तुम तो रहना चाहती हो रेहान के साथ, उसने सीधा वार किया, तो एक बार ताया और ताई के खिलाफ बोलकर दिखाओ। एक पल का सन्नाटा, दो मिनट नहीं लगेंगे, तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। कमरे की हवा भारी हो गई। सादिया चुप खड़ी थी, मगर उसकी आंखों में अब डर नहीं था। समझ आ चुका था उसे, ये घर घर नहीं, एक खेल है, और अब वो भी ये खेल समझने लगी थी। उधर रेहान अपने ऑफिस में बैठा था, सामने फाइलें खुली थीं और दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, नूर का घर। उसने अपने एक कर्मचारी को बुलाया और सख्त लहजे में पूछा, क्या अपडेट है उस घर का? सर, किराएदार अभी भी वही है, लेकिन अगर आप कहें तो हम उसे आसानी से निकलवा सकते हैं, वकील की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, कर्मचारी ने जवाब दिया। रेहान ने कुर्सी पर पीछे झुकते हुए ठंडी आवाज में कहा, घर छुड़वाना नहीं है, केस जीतना है, समझे तुम? तभी ऑफिस का दरवाजा तेजी से खुला और अंदर आया अरमान। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरे खिलाफ ये सस्ता प्रोपेगेंडा क्यों किया जा रहा है? अरमान ने सीधे सवाल किया। रेहान ने उसे घूरते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरमान ने गहरी सांस ली, फिर बोला, मानता हूं नूर से गलती हुई है, उसे आप पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी जिंदगी बर्बाद कर दें। रेहान ने पानी का गिलास उठाकर अरमान की तरफ बढ़ाया, पहले पानी पियो फिर बात करते हैं। लेकिन अरमान का गुस्सा अब काबू से बाहर था। उसने गिलास पर हाथ मारा और कांच के टुकड़े फर्श पर बिखर गए। मुझे कुछ नहीं पीना, वो कर जा। रेहान बस उसे देखता रह गया, क्योंकि आज तक किसी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की थी। कमरे की हवा भारी हो चुकी थी, और ये सिर्फ एक बहस नहीं थी, ये तूफान आने से पहले की खामोशी थी। रेहान ने जबड़ा भींचते हुए पूछा, क्या करना चाहते हो तुम आखिर अरमान? अरमान उसकी आंखों में देखते हुए एक एक शब्द साफ बोला, आपको नूर पर गुस्सा है, ठीक है, निकालिए, मुझे उससे कोई परेशानी नहीं, लेकिन उसके किरदार पर उंगली उठाने का आपको कोई हक नहीं है। रेहान अचानक कुर्सी से खड़ा हो गया, उसकी आवाज भारी और गुस्से से भरी थी। मैं उसके कैरेक्टर पर इल्जाम नहीं लगा रहा, अरमान ने तुरंत पलटकर कहा। अच्छा, तो फिर कौन लगा रहा है? कौन उसे बदनाम कर रहा है? दोनों के बीच का फासला अब सिर्फ कुछ कदमों का था, लेकिन माहौल बारूद से भरा हुआ। रेहान ने ठंडी हंसी के साथ कहा, ये लोकेशन, ये सबूत, ये बनवाए नहीं जाते, निकलवाए जाते हैं। और हाँ, अपनी गलती छुपाने के लिए थोड़ा होमवर्क कर लिया करो अरमान। अरमान की आंखों में अब गुस्से के साथ साथ तिरस्कार भी साफ छलक रहा था। होमवर्क वो तो मैं करूंगा ही, लेकिन सच से भागना आपके बस की बात है, मेरे नहीं। वो एक कदम और आगे बढ़ा, आवाज धीमी मगर चुपती हुई थी। सच ये है अरमान, आपको नूर के किरदार की कोई परवाह नहीं है, आपको सिर्फ अपनी बदनामी का गुस्सा है, मैं गलत कह रहा हूँ? कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। रेहान ने नजरें फेरते हुए कहा, उसके हिसाब से तो वो दोनों पूरी रात गेस्ट हाउस में थे। अरमान ने उसकी तरफ देखा, गहरी सीधी नजर से। ऐसा सिर्फ आप सोच सकते हैं, पता है क्यों? वो रुका, फिर बेहद ठंडे लहजे में बोला, क्योंकि आपके पास दिल ही नहीं है। ये सुनते ही रेहान का गुस्सा जैसे फटने को तैयार था, लेकिन इस बार बात सिर्फ गुस्से की नहीं थी। अरमान के जाने के बाद कमरे में सन्नाटा छा गया था। रेहान वहीं खड़ा रह गया, उसकी नजर फर्श पर बिखरे हुए कांच के टुकड़ों पर टिक गई। वो धीरे धीरे झुका और टूटे हुए गिलास का एक टुकड़ा हाथ में उठा लिया। उसकी मुट्ठी कसती चली गई, इतनी कि कांच उसकी हथेली में चुभने लगा, मगर उसे दर्द का एहसास तक नहीं हुआ। आज पहली बार किसी ने उसके सामने खड़े होकर उसकी बात काटी थी, उसे गलत ठहराया था, और अब उसके खिलाफ आवाजें मिटने लगी थी। उधर नूर के घर का माहौल बिल्कुल अलग था। दरवाजे पर दस्तक हुई तो सुल्ताना बेगम ने जाकर खोला। सामने नूर की खाला और साकित खड़े थे। अरे आप लोग, अचानक सुल्ताना बेगम ने हैरानी से कहा। अंदर आते ही खाला ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, फिर बोली, मुझे तो साकित ने बताया कि नूर यहाँ है, वरना हमें तो खबर ही नहीं मिलती। साकित चुप खड़ा था, उसकी नजरें बार बार नूर को ढूंढ रही थी। सुल्ताना बेगम ने हल्की सांस लेते हुए कहा, असल में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए नूर को वापस आना पड़ा। खाला ने भौहें चिकोड़ ली, अच्छा तबीयत खराब थी? फिर वो थोड़ा पास आकर धीमी आवाज में बोली, लेकिन बाहर तो कुछ और ही बातें सुनने को मिल रही हैं। सुल्ताना बेगम का चेहरा सख्त हो गया। कैसी बातें? खाला ने सीधा वार किया। वो तुम्हारी किराएदार है ना, लोग कह रहे थे किसी लड़के का चक्कर है उसका, वो लड़का उसके पीछे पीछे यहाँ तक आया था। कमरे की हवा एकदम भारी हो गई। सुल्ताना बेगम ने गुस्से में कहा, बस बहुत हो गया, लोगों का काम है बातें बनाना। लेकिन खाला पीछे हटने वालों में से नहीं थी। मैं बातें बनाने नहीं आई, सच जानने आई हूँ, सुल्ताना बेगम ने तुरंत सफाई दी, लेकिन उनकी आवाज में पहले जैसा भरोसा नहीं था। खाला ने बात पकड़ते हुए कहा, उसने खुद बताया कि एक लड़का नूर के पीछे पीछे यहाँ तक आ गया था, भला कोई लड़का यूं ही किसी लड़के के पीछे क्यों आएगा? सुल्ताना बेगम ने थोड़ा सख्त होकर कहा, जैसे वो खुद भी जवाब ढूंढ रही हूँ। अम्मी आप ये बात यहीं छोड़ दीजिए, साकित ने बीच में कहा, उसकी आवाज में बेचैनी साफ थी। लेकिन खाला रुकने वाली नहीं थी, नहीं मैं बात अधूरी नहीं छोड़ूंगी, मैं उसी किराएदार की बात कर रही हूँ जो तुम्हारे घर में रहता है। वही बता रही थी कि नूर बड़े शहर में जाकर कुछ उल्टे सीधे कामों में फंस गई थी, इसीलिए फेल होकर वापस आई है। साकित ने झुंझलाकर अपने सिर पर हाथ मारा। ये सब वो खुद भी नहीं सुनना चाहता था, क्योंकि उसके दिल में तो अब भी नूर के लिए वही जगह थी और वो उससे निकाह करना चाहता था। उधर किचन में नूर चुपचाप चाय बना रही थी, उसके हाथ चल रहे थे, लेकिन दिल जैसे कहीं और अटका हुआ था। रानी उसकी सहेली उसके पास खड़ी सब सुन रही थी। आखिरकार वो खुद को रोक नहीं पाई।
ये क्या बकवास कर रही है वो, और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्या? नूर ने धीमे से जवाब दिया, मेरे अब्बा कभी कोई गलत फैसला नहीं कर सकते। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उस शांति के पीछे बहुत कुछ दबा हुआ था। रानी ने हैरानी से उसे देखा, तुम इतनी खामोश कैसे हो सकती हो नूर, कब से इतनी सहने वाली बन गई हो? नूर ने चाय कप में डाली, एक गहरी सांस ली और बिना कुछ कहे ट्रे उठाकर बाहर की तरफ चल पड़ी। जैसे ही वो कमरे में पहुंची, सबकी नजरें उस पर टिक गईं। कुछ में शक था, कुछ में ताने और कुछ में खामोश फैसले।